ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 37। तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोन्वखण्डितधीः पुमान् कोन्वखण्डितधीः पुमान्। शब्दानुवाद एवं तात्पर्य। श्री ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चिष्ट हो। मेरे पीछे कृपया दोहराइए, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य देवता तथा पशु में ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चिष्ट हो। निश्चिष्ट शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, चेष्टाहीन। इसका अर्थ होता है कि सभी चेष्टा करते हैं, निश्चिष्ट कोई नहीं होता। तात्पर्य, आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनु ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न हुआ हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना एक ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामाशक्ति से कोई भी नहीं बच पाता। अतः माया के सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री ही है जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग पूर्ववर्ती क्लास में हमने बतलाया था। हम सभी जीवों के मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। हम सभी देख सकते हैं इस संसार में इतनी विपत्तियां हैं, भारी विपत्तियों के बीच में हमें जाना होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को विपत्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, या तो वह व्यक्ति पागल है अथवा तीनों गुणों से परे हैं, अन्यथा एक सभ्य मानव को, भद्र व्यक्ति को इस संसार में विपत्ति का अनुभव प्रत्येक पल में, प्रत्येक पदक्षेप में होना ही चाहिए। ऐसा कोई अनुभवी नहीं है जिन्होंने अपनी युवावस्था को पार करके वृद्धावस्था में पहुंचा है वो कहेगा कि मेरा जीवन पूर्णतया सुख सुविधा में बिता है। कोई नहीं कहेगा। इतनी विपत्तियों में रहते हुए भी इस संसार के भोगों में हमारी जो आसक्ति है, इसकी जो मूल जड़ है, जो कारण है, वो है माया। यदि आप लोग गीता पाठ करेंगे, भागवत को देखेंगे, तो प्रभुपाद जी ने कहा है, माया शब्द का संक्षिप्त अर्थ है, बिल्कुल मोटा अर्थ, जो नहीं है वो दिखलाई देता है और जो है वो दिखता नहीं है। उदाहरण के रूप में इस संसार में सुख नहीं है, परंतु हमें सुख जैसा प्रतीत होता है, सबको अनुभव है, अन्यथा व्यक्ति जी नहीं सकता। और जब तक इस संसार में सुख के पीछे भटकता रहेगा, तब तक निर्वाण अर्थात दुख समाप्ति की कोई आशा नहीं है, कोई आशा, जरा सी भी आशा नहीं। तो माता ने पूछा, ध्यान देने योग्य बात है, ये जो गंभीर प्रसंग यहां चल रहा है, इसके वक्ता है भगवान कपिल, जो एक मां के समीप पुत्र के रूप में विराजमान है। कोई वरिष्ठ ज्येष्ठ अथवा वृद्ध व्यक्ति ये प्रवचन नहीं कर रहा है, अथवा अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के बीच अथवा सन्यासियों के मध्य ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये गंभीर प्रवचन हो रहा है एक माता और एक पुत्र के बीच में। और माता प्रौढ़ा थी और पुत्र युवा थे, और एक युवा पुत्र एक घनघोर स्त्री की निंदा एक मां के समीप कर रहा है नहीं। कोई पति पत्नी के पास कर ले तो बात अलग है, मित्र मित्र के पास कर ले तो बात अलग है, हाँ, राजनेता कहीं मंडप में कहीं कहीं कर ले तो बात अलग है, परंतु एक सभ्य जीव है, जीव हाँ, परम जीव श्री ईश्वर कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के समीप ये सारी बातें कह रहे हैं। तो शास्त्र दृष्टि में यदि हम आपात विचार करेंगे तो ये बात जचती नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा के विपरीत भी है। उद्धव जी से विदुर जी ने ज्ञान के बारे में पूछा, उद्धव जी ने कहा ये मर्यादा नहीं रहेगी कि हम आपको ज्ञान उपदेश करें, अच्छा यही होगा कि आप मैत्री जी के समीप चले जाए। परंतु यहां पर ऐसी बातें हुई है कि माता ने अपने पुत्र को अभी पुत्र नहीं, उसने माना नहीं, माता समझ गई कि ये मेरे पुत्र नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। जब तक अर्जुन जी और श्री कृष्ण में मित्रता का भाव था तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं दिया, नहीं दिया। जब अर्जुन जी निराश्रय होकर के कहने लगे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता जत श्रेयो स्यात् निश्चितम ब्रूहितन मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य है अतः आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। तो यद्यपि ये माता पुत्र के माता पुत्र का संवाद है, तो पुत्र एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और उस भूमिका में मां को जो जो केवल मां नहीं, माता को लक्ष्य करके पूरे समाज को, पूरे संसार को, समूचे संसार को, पूरी दुनिया को ये उपदेश, ये संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है? माता ने कहा था, बेटा ऐसी बातें कहो जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का मन संसार से उब जाएगा, विरत हो जाएगा। यद्यपि हम सब जानते हैं कि संसार दुखद है, लेकिन जब दुखद संगीत कोई चलता है तब मन कैसा लगता है? है वही, है वही दुख है, कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी सीढ़ी चलती है। परंतु जब भी किसी साधु के मुख में, किसी विरक्त के मुख में, किसी संसार त्यागी सन्यासी के मुख में कोई संसार से विरक्त होने वाला गीत सुना जाता है तो मन तुरंत विरक्त हो जाता है, होता नहीं? ये अनुभव की बात है। हड्डी जरे जैसे लोहा लकड़ी, केस जरे जैसे घासारे, सोने की सी तन जरी गई, कोई ना आए पास आए। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। एक कैसा नाता है, उस नाते रिश्तों को लेकर के तुम फूले फूले चल रहे हो, सीने तान करके चल रहे हो, अभिमानी हो रहे हो, मानिनी हो रहे हो। जब वो विरक्त भरी वाणी को ये सुन लेता है तो उसका मन तुरंत विरक्त से, विरक्त भाव से भर जाता है। तो माता का यही आग्रह रहा, मेरे पुत्र जैसे संसार से मन विरक्त होगा तो मुझे ऐसा उपदेश कर। भगवान कपिल हैं, सर्वसमर्थ, उनको पता है कैसा उपदेश करना है। तो उन्होंने कोई अवास्तव बात नहीं कही, जो संसार में घट रहा है, घट रही है, उन्हीं बातों को माता के समीप रखा। मां गर्भवास में भरी यंत्रणा है, बहुत पीड़ा होती है। विचार कर देख मां, जब कोई संतान, कोई गर्भ 10 महीनों तक गर्भ में रहता है, उस माता को कितनी पीड़ा होती है। गर्भ में ही वो गर्भ दुखद स्थिति में ही रहता है, जन्म लेता है फिर दुख है, विद्या अध्ययन के लिए जाता है रोता हुआ जाता है। शुरू में बच्चा नहीं जाता, उसको पीट पीट करके मां पिता लेके छोड़ते हैं, जाओ पढ़ो, वो भी दुख। विद्या अर्जन करना एक दुख नहीं है क्या? दुख तो है ही है, सब कुछ दुख है। इस संसार में दुखालय में जब आया है तो वहां पर ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिलेगी जो दुख से रहित हो, दुख रूपी स्टांप जिसमें न लगी हो, ऐसी कोई चीज तो है नहीं। विद्या अध्ययन करना भी दुख है, नौकरी करना भी दुख है, भोजन करना भी दुख है। क्या भोजन करना सुखप्रद है? नहीं, सुखप्रद नहीं है। कभी कभी इतना दुख होता है, हम जब पढ़ते थे, हमको याद है हमारे के हेड पंडित जी थे, वो मांसाहारी थे पर उनके दांत सब निकल गए थे, है ना। उन्हीं के समय पे हमारा उनके साथ संबंध था, अच्छा संबंध था। तो हेड पंडित की जो पत्नी है गुरुमा, तो उन्होंने हमसे कहा, उड़िया भाषा में कहा बुझल महंती, हमसे कहा तुम्हारे जो सार है ना, वो मांस बड़ा पसंद करते हैं पर क्या करे, खा नहीं सकते हम, इसलिए जूस लेकर के उनको देती है। वो उसको पी करके यद्यपि संतोष कर रहे थे पर दूसरों को देख करके और वो भोजन को देख करके उनको बड़ा दुख होता था। ये सब हमारा अनुभव है। कोई भी कार्य दुख से रहित नहीं है। तो एक एक करके, बारी बारी करके वो समझा रहे हैं कि ऐसा जवानी कष्ट है, बुढ़ापे में भी कष्ट है, गर्भ में भी कष्ट है, गर्भ से बाहर निकलोगे तब भी कष्ट है। अच्छा ठीक है, कोई कहेगा जवानी सुखदाई है, नहीं मेरी मां जवानी भी सुखदाई नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले जवानी में ऐसी हमारी एक माया है, वो बहुत धावा बोलती है, एक एक करके बारी बारी करके पीछे से उन्होंने समझाया है। बोले जवानी में काम वासना अति प्रबल होती है, बहुत भयानक रूप से, जैसे मान लो आंधी आ जाती है, सुनामी आती है, ऐसे शरीर में मानो सुनामी आई है, आंधी आई है, अंधड़ चलती है, उस समय व्यक्ति का हिताहित ज्ञान नहीं रहता, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका ज्ञान नहीं रहता। तो श्री हरि ने एक सर्वोच्च उदाहरण रखा, श्री ब्रह्मा जी का, यानी कि उससे और बढ़कर कोई बड़ा दृष्टांत नहीं हो सकता। पिछली क्लास में आप लोगों ने सुना होगा, इसी तृतीय स्कंद में श्री ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री को उत्पन्न करते हैं और उनके रूप से आकृष्ट होते हैं, वो निर्लज होकर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। मरीचि आदि उनके पुत्रगण वहीं पे थे, उपस्थित थे। पिता को ये भान नहीं रहा कि मेरे पुत्र मेरे समीप है, ऐसी दशा थी। तो श्री हरि यहां कपिल कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का ये हाल हुआ, स्त्री रूप के प्रति इतने आकृष्ट हो गए, इतने आकृष्ट हुए कि वो अपने पर नियंत्रण खो बैठे, कोई नियंत्रण नहीं रहा। सिर्फ क्या ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में, धी शक्ति के अवतार श्री ब्रह्मा जी जिनका नाम है हिरण्यगर्भ, क्या उनको पता नहीं था कि समाज में हमारी बड़ी हंसी होगी? सब कुछ पता था, परंतु ऐसी स्थिति में पहुंचे जो उनका होश हवास खो गया, कोई शुद्ध बुद्ध तक नहीं रही, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने कहा, कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर कामांध जो होता है उसको रात और दिन दोनों में नहीं दिखता। यह दिखना शब्द का अर्थ होता है विचार करना, रात दिन शब्द का अर्थ होता है अच्छा बुरा, रात बुराई के लिए और दिन अच्छाई के लिए। पर जब भी कोई व्यक्ति कामांध होता है उसको अच्छा बुरा का कोई भान नहीं रहता। तो श्री भगवान कपिल देव श्री ब्रह्मा जी का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, ऐसा हाल उनका हुआ और उनकी जो परवर्ती पीढ़ी है, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेशु, तत्सृष्ट माने तेन सृष्टा, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। अर्थात यदि ब्रह्मा जी स्वयं मोहित होते हैं तो श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि में ऐसा कौन पुरुष होगा, अर्थात कौन जीव होगा जो काम से प्रभावित नहीं होगा। तत्सृष्ट, तत्सृष्ट माने श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि दो तरह से चलती है, दो लाइन, एक प्रवृत्ति मार्ग वाली है और एक निवृत्ति मार्ग का है। जैसे कई हो गए हंस, अरुणी, रुभूर, यति, सनक सनातन आदि, इन्होंने विवाह नहीं किया, इन्होंने संसार नहीं बसाया, इन निवृत्ति मार्ग में चले गए। प्रवृत्ति में आए मरीचि आदि, है ना, मरीचि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, कर्दम, बहुत ढेर सारे हैं, ये तो ऋषि हैं। राजा वर्ग भी आए जैसे प्रियव्रत आदि, ये सब आ गए। दक्ष आदि, वो तो ऋषि नहीं थे, वो तो महाविषयी थे दक्ष, ये भी आ गए। तो श्री ब्रह्मा जी के जितनी भी सृष्टियां हैं उनमें से सब विषयासक्त हो गए, थोड़े बहुत को छोड़ करके सनक आदि जो नौ बच्चे हैं, रिभु, हंस, आरुणि, रिजति, सनक आदि, नारद, ये इनको छोड़ करके बाकी सब चल पड़े। तत्सृष्ट सृष्टेशु, अर्थात मरीचि आदि को, मरीचि के पुत्र कश्यप कहो, और कश्यप से तो पूरी दुनिया भरी हुई है नहीं, कश्यप की अनेक पत्नियां थी, उन पत्नियों से घोड़ा घोड़ी बने, पक्षी बने, सर्प बिच्छू, सब कुछ बने वो कश्यप की पत्नियों से। तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि मानो कश्यप जी से ही है। तो यहां शास्त्र में बतलाया गया, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेशु को नखंडित धीहि, श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी को लेकर के उनके सृष्टि, उनके बच्चे, नाती पोतों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिनकी धी माने बुद्धि खंडित नहीं हुई है। यह खंडित शब्द का अर्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विपथ ना होने वाली। पर खंडित शब्द का अर्थ यदि आप दूसरे दूसरे आचार्यों के टीका में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आकृष्ट होने वाली बुद्धि। यदि हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा मन किसी इतर वस्तु के प्रति आकृष्ट हो रहा है तो उस बुद्धि का, उस चेतना का, उस मन का नाम है खंडित धी, खंड विखंडित हुआ है, आकर्षित हो गया। क्यों खंडित धी कहा गया? श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे बिना ये सारा संसार माया है, और जिन जिन की बुद्धि उसमें फंसी हुई है तो हमसे वो बुद्धि हटी गया, हटी हुई है, हट गई है, इसलिए खंडित हो गया, अलग हो गया, वो बुद्धि हमसे अलग हो गई। यदि उनकी बुद्धि मुझ में एकीभूत होती, केंद्रित होती, तो उनकी बुद्धि में माया का आकर्षण नहीं होता। ये टेक्निक्स है। माया से प्रभावित नहीं होने के पीछे ये तकनीक है। जैसे मान लीजिए, आप सभी जानते हैं माया को बहुत, व्यासासन पर बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करना उचित नहीं है। कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी हम लोग जैसे ही माया को सपना ये बहुत कुछ बताते हैं। ठीक बात है, शास्त्र में ये सब बातें लिखी हुई है, सपना ही है, लेकिन हमें तो सपना नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? बिल्कुल सत्य लग रहा है। और यदि सत्य नहीं लगा होता तो किसी का आकर्षण नहीं रहता। यदि हम मलमूत्र का यहां पुड़िया एक लाकर आपके पास रख दें और आपको बता दें, कोई व्यक्ति आकर्षण नहीं होगा, होगा? कोई नहीं होगा। हम आपको कहेंगे आओ इसको ले लो, ये पुड़िया को अपने पास रखो, कोई नहीं रखेगा। परंतु ये मलमूत्र का पुड़िया होते हुए भी हमारा आकर्षण बना रहता है, इसका अर्थ होता है कि हम असत्य से प्रभावित है कि नहीं? पर सत्य के द्वारा प्रभावित कब होंगे? ना जब भी हमारी चेतना श्री कृष्ण चेतना के साथ मिल जाएगी। श्री कृष्ण कभी इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण प्रभावित नहीं होते हैं। यदि हम श्री कृष्ण चेतना में रहेंगे, हम भी प्रभावित नहीं होंगे। यह सीधा सा उत्तर है। ये तकनीक समझ में आ रही है? क्योंकि उनकी चेतना में ये माया स्वप्न है। यदि हम उनकी चेतना में रहेंगे तो हमको माया सपना लगेगी। यदि हम उनकी चेतना में नहीं रहेंगे तो हमको माया सत्य प्रतीत होने लगेगी। ये वास्तविकता है, वस्तु तस्तु यही है। इसीलिए यहां भगवान कपिल कहते हैं कोनु अखंडित थी, ऐसी किसकी बुद्धि हुई है जो आकृष्ट नहीं भई। अर्थात सबकी बुद्धि माया के द्वारा आकृष्ट हुई है। पुमान शब्द का यहां अर्थ होता है जीव विशेष, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, कोई भी हो। यहां पुमान माने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री भी नहीं है, स्त्री भी है। यहां पुमान शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा। और था श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी जीवात्माएं इन काम वासनाओं से आकृष्ट है। बोले कौन नहीं है? ऋषिम नारायणम रिते, बोले केवल नरनारायण ऋषि इन वासनाओं के द्वारा प्रभावित नहीं है। कैसे हो सकते हैं? अभी अभी तो मैंने कहा कि भगवान कभी अपनी माया से प्रभावित नहीं होते। उनको सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, यह पता है। तीन तत्व है संसार में, ईश्वर, जीव और माया। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा तत्व है क्या? ये जो काल और कर्म, ये काल ईश्वर अंश है और कर्म प्रकृति का अंश है। पांच जो प्रभुपाद जी ने बताया, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, इनमें से प्रमुख है तीन। उसी गीता में श्री कृष्ण ने कहा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त रितेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेशु योद्धा। कालोस्मि, मैं काल हूं। जब मैं काल हूं तो ईश्वर तो है ही है, इसे दो मिलकर के एक हो गए, ईश्वर हो गया। और कर्म कौन करता है? अविद्या के वशवर्ती होकर के जीव कर्म करता है, इसलिए जीव में कर्म मिला लो। तीन तत्व बच गए, ईश्वर, जीव और माया। अजीव तो तटस्था शक्ति रहा ही है, वो तो माया से सदा प्रभावित है, और ईश्वर इसलिए कहा गया कि माया से प्रभावित नहीं है। तो जो जीव ईश्वर के संरक्षण में रहेगा वो माया से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए कपिल के रूप में जो उपदेश कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कपिल विवाहित तो थे नहीं और उनके जीवन में ये सब परीक्षा नहीं आई थी, इसलिए दृष्टांत के द्वारा वो माता को समझाना चाहते थे। हे माते ऋषिम नारायणम ऋते, दक्ष की 16 पुत्रियां थी, उनमें से उन्होंने 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया था, एक पितर को दिया था और एक भवानी भगवान शिव को दे दिया था और एक अग्नि को, शायद ऐसा देख लेना चतुर्थ स्कंध में, धर्म के साथ 13 पुत्रियों का विवाह दे दिया। इसका अर्थ होता है यदि कोई भक्त होता है, क्षत्रिय होता है, राजा होता है, वो 100 विवाह करे चाहे 1000 विवाह करे उससे कोई दोष नहीं, बल्कि उनको तो देना ही चाहिए। चित्रकेतु महाराज जी की 1 करोड़ पत्नियां थी ऐसा शास्त्र कहता है, जितने क्षत्रिय राजा हुए धार्मिक राजा उन सबकी बहुत बहुत पत्नियां थी, है नहीं, बहुत पत्नियां थी। तो इस भागवत के इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है यदि भक्त हैं, राजा है, क्षत्रिय है, तो बहु विवाह कर सकता है, वो समाज के लिए हितकारी है। इसलिए धर्म को तेरा, अब शास्त्र कहेगा कि भाई धर्म तो है, तुमने इतनी शादी क्यों कर ली, इतनी शादी क्यों कर ली? अरे भाई यदि आप धर्म की पत्नियों को देखोगे तो श्रद्धा का पुत्र हुआ शुभ, अशुभ तो पैदा नहीं हुआ। आप देख लीजिएगा उन पुत्र परिचय जब आप पाओगे आपको बड़ा हर्ष होगा, आपका मन हर्ष उल्लास से भर जाएगा, कितनी अच्छी अच्छी संतानों की प्राप्ति हुई है उन माताओं को। तो उनमें से वो एक पत्नी धर्म की, उनका नाम मूर्ति, धर्म मूर्ति से पुत्र रूप में 2 पैदा हुए, उनका नाम रहा नर तथा नारायण। आज भी बद्रिकाश्रम में दोनों तपस्या कर रहे हैं संसार हित के लिए। इंद्र ने सोचा कि ये तप के प्रभाव से मेरा स्थान को प्राप्त करेगा। देवता लोग बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, बहुत ईर्ष्या, खास करके इंद्र जी में, तो उन्होंने स्वर्ग के अप्सराओं को भेज दिया, रंभा, मेनका, पूर्वचित्ती, तीलोत्तमा, बहुत अप्सराए हैं उनका सब नाम, भेजा जाओ, साथ साथ कई गंधर्वों को भी भेजा, और उस नृत्य गीत के लिए बसंत को भी भेजा, और साथ साथ कामदेव और रति को भी भेजा, जाओ इनके तपस्या को खंड विखंड कर दो, इनके चित्त को काम बाण से जर्जरित करो ताकि ये तपस्या से विरत हो जाएं। आए, सभी आए, ये तो इंद्र की सेनानी थी, उस बद्रिकाश्रम में तपोभूमि में जब इन्होंने अपना नृत्य प्रारंभ किया, बसंत की मद मतवाली सुगंध समीर और उस वातावरण में अप्सराओं का मनोरम नृत्य और उस समय गंधर्व का कामबाण, कौन व्यक्ति है जो सह सकता है? नहीं सह सकता। परंतु अखंड धी, खंडित धी नहीं, अखंड धी नारायण अपनी तपस्या से सब जान लिए। अच्छा, ये सारी करतूत इंद्र की है, आज हमें एक शिक्षा उससे देनी है। तपस्या से भगवान शंकर भी भूषित हैं, मार्कंडेय भी भूषित है, लेकिन कभी कभी इनमें क्रोध आता है। तपस्या भी एक धन है और धन मद का कारण होता है, वो अभिमान को जगाता है। नारायण ऋषि ने जब देखा कि इंद्र ने ऐसा किया है, उन्होंने अपने ध्यान से और अपने श्री अंगों में से सुंदर सुंदर रमणियों को उत्पन्न किया और उन सुंदरियों की रूप शोभा और सुगंधि से जो रति आई थी, जो कंदर्प आए थे, जो कामदेव आए थे, जो अप्सराएं आई थी, उनकी रूप शोभा फीकी पड़ गई। वो सब हाय हाय करने लगे, सब हाय हाय करने लगे। पांच मूर्खों में कोई पंडिताई करे, कोई असली पंडित आ जाए तो वो हाय हाय करेगा, क्या करेगा, कहां जाएगी उसकी पंडिताई, किसी किनारे भी वो जा नहीं सकता। अपने ऊपर वो लांछन करने लगे और परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री ऋषि के चरणों में गिड़गिड़ा करके बोलने लगे, हे प्रभु, आप में ही ये सामर्थ्य है, आप में आप ही ये सब कर सकते हो, आपके अतिरिक्त ऐसा दुष्कर कार्य कोई नहीं कर सकता। अनंत अनंत रूपश्रियों को देखकर जो कंदर्प आए थे उनके मन में भी लालसा पैदा हो गई, हाय हमको इनमें से कोई एक प्राप्त हो जाए। भगवान है वांछा कल्पतरु, वे कल्पतरु है, घट घट निवास करने वाले हैं, अंतर्यामी है, नस नस को जानते हैं। उन्होंने जाना और इंद्र के लिए भी एक संदेश बनेगा, इनका तो मद खंडित हुआ ही, और इंद्र के लिए एक संदेश लेके जाओ और बता दो इंद्र को कि तेरे स्वर्ग में ऐसी रूपश्री नहीं है। और रूप वाली भी हो, शरीर में तो बदबू सबकी है। हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम बड़े बड़े अक्षरों में आप छपते देखते हो टीवी में, इसमें क्या दो दिन नहीं नहाएगी तो शरीर में सुगंध ही निकलेगी, केवल दुर्गंध से भरा हुआ है, यही तो मोह है। गोपेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे, बोले उज्जैन मंदिर का जब उद्घाटन हुआ रानी मुखर्जी आई थी, और टेम्पल को देखने के लिए लोग बहुत कम गए, उसको देखने के लिए कतार में ठलम ठला होने लगा। है क्या थी वो मलमूत्र की पुतला, और ये शोभा और थोड़े दिन में नहीं रहेगी, कोई नहीं पूछेगा, बासी पानी से नहीं पूछेगा। कितने आए, जो आया सो गया, गए राजा रंक फकीर, सब चले गए। इंद्र जी के लिए भेजा, इनमें से कोई एक को चुन लो, जितनी सुंदरियां हैं तो उनमें से जो प्रमुख गंधर्व होगा, उन्होंने चुना एक रूप से रूपश्री को जिसका नाम था उर्वशी। जाओ स्वर्ग लोक के लिए ये हमारी भेंट है, भगवान श्री नारायण ने कर जोड़ करके कहा। कितनी क्षमाशीलता, काम पर कितना विजय है। उस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए कपिल जी कहते हैं, ऋषिम नारायणम रिते, उनके बिना कौन ऐसा है जिनका चित्त आकृष्ट नहीं होगा, खंडित भी नहीं होगा, अर्थात सब होंगे योषिन मयेय मायेया। योषिन माने स्त्री, जो भोग देती है ये मेरी माया है, इससे किसका चित्त खंडित नहीं होगा, अर्थात सबका होगा, शास्त्र में दिखाया गया है, सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वरुण का गर्भ खंडित किया, इंद्र का गर्भ खंडित किया, लोकपाल दिक्पाल सबके गर्भ को उपशमित किया। तो उस समय स्वर्गलोक में मदन सोच रहे थे, हमें शायद नहीं जीता, हमें शायद नहीं जीता। श्याम सुंदर ने ऐसी लीला करी, बोले अच्छा अब तेरी बारी है। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्री योग मायाम उपाश्रितः। शरत पूर्णमासी, शरत पूर्णिमा, अनंत 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 कोटि चंद्रमा को लज्जित करने वाली चंद्रमा का उदय उस समय हुआ था। वो चंद्रमा ऐसा था। और ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि कितनी है, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र सहस्र युग, ये ब्रह्म रात्रि है। तब तक अनंत अनंत गोपियों के साथ अनंत ने लीला विहार किया। उनकी रूप शोभा की तुलना कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। रास पंचाध्याय तो वर्णन ऐसा निषेध किया गया है, जीव गोस्वामी ने कहा है। एक श्लोक हम कहते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्म नखाग्र पाते। इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। रति क्रीड़ा के भिन्न भिन्न लक्षणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया, परंतु उस विहार में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं शशांकांशु विराजिता निशा सा सत्य कामानुरता बलागण शिशेवे आत्मनि अवरुद्ध सौरत सर्वासरत काव्य कथा रसाश्रया। शिशेवे, उन्होंने उनका सेवन किया, आत्मनि अपने में, परंतु लक्षण क्या है, अवरुद्ध सौरत, उनका तेज स्खलित नहीं हुआ। इतनी रूपश्रियों के द्वारा बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, बहुत कुछ बातें हैं, पर उनका तेज स्खलित नहीं हुआ। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त सबके तेज स्खलित हुए। आलिंगन तो दूर की बात है, भों को ऐसा नचाना वो तो दूर की बात है, केवल देख लिया, हवा में कपड़े उड़ गए, बस भागे। कितने कितने साधु भागे हैं, कई साधु ऐसे शास्त्र में वर्णन आया है, सब तेज स्खलित हुआ, किसका पानी में बह गया, किसका किसी घास पर गिरा, क्या हुआ क्या हुआ। हमने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर जी का जब तेज स्खलित हुआ तो धरती में सोना और चांदी बना, ऐसा है, ऐसा कहा जाता है। परंतु नारायण का कहीं ऐसा हुआ, ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं देता। अवरुद्ध सौरत, अवरुद्ध सौरत, ब्रह्मचर्य उनका अटल रहा, अखंडित रहा, खंडित ही नहीं है। ऋषिम नारायणम रते मायया, माया को मोहित करने वाली है, इसलिए इनका नाम है मायाधर। मायम धारेती ती मायाधर, और मायावश मायाधीश, श्री कृष्ण है माया के अधीश और जीवात्मा है माया के वश में है, मायावश मायाधीश। कितना प्रबल है, केवल यहां ब्रजभूमि में नहीं, द्वारका में जब विवाह किया था तब भी की बात है। 16,108 रानियां थी, और वो भी एक से एक रूपश्री थी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, रुक्मणी, अनेक 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 रूप शोभा से युक्त ये सब महिषियां थी। पर श्री कृष्ण के लिए जब शब्दों का प्रयोग करते हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं, स्माया बलोक लवदर शित भाव हारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडी पत्न्यस्तु षोडश सहस्रम अनंग वाणी यस्येन्द्रियम विमथितुम करणी न बिभ्य। इतने सामर्थ्यशाली थे वो, यस्य इंद्रियम विमथितुम, बोले जिनके इंद्रियों को मंथन करने के लिए, सामान्य जनता तो क्या है, रुक्मणी का जो विवाह हो रहा था उस समय ऐसा कहा गया है कि घोड़े पर जो राजा लोग आए थे, सवार थे, जब रुक्मणी जी वो चंडी का पूजा करके, देवी पूजा करके आ रही थी, घूंघट उतार करके थोड़ी से ऐसे ही तिरछे चतबन डाली तो सब घोड़े से गिर गए नीचे, सब घोड़े से नीचे गिरे, ऐसा कहा जाता है। और उनके लिए कहा गया है स्माया बलूक लब दर्शित भावहारी। स्माया वालों को, स्माया माने मंद मुस्कान से युक्त तिरछ चितवन, कोई सुंदर स्त्री थोड़ी मुस्कुरा करके किसके ओर देख दे तो क्या होगा उसका, उसकी छाती फट जाएगी, है नहीं है। स्माया वलोक, स्माया मंद मंद मुस्कान के साथ तिरछी नजर, भागवत कहती है, हम नहीं कह रहे है। स्माया वलोक लव, लव माने थोड़ा, आप देखोगे जब गणित करोगे सबसे छोटा अंक जो है उसको लव कहते हैं। लवदर्शित भावहारी, जिसने एक लव के लिए भी देखा, भावहारी माने वो बेहोश होकर के गिरा है। स्माया बलोक लवदर्शित भावहारी, आहा, ये भाव को हरण करने वाले हैं। और क्या कहते हैं, सौरत मंत्र सौंडे ही, और जो सौरत प्रेम भरी जो बातें हैं, फिर तो और क्या बात है, केवल देख लिया फिर दो बातें कर ले, फिर तो क्या है, मेरी जिंदगी तेरे हवाले है, है ना। स्माया बलोक लवदर्शित भावहारी, भ्रुभंग प्रहित सौरत मंत्र सौंडे, पत्नियस्तु षोडश सहस्रम अनंग वाणे, ये सब अनंग के बाण है, अनंग समझ रहे हैं, जिनका अंग नहीं है, ये मंद मुस्कान का अंग नहीं है, लेकिन बिना अंग का जो करता है अंग वाला कोई नहीं कर सकता। थोड़ी तिरछी नजर, मंद मुस्कान, मीठी मीठी वाणी, हाँ थोड़ी सी अंग भंगी, इनमें से तो पता नहीं क्या क्या होता है। पत्नियस्तु षोडश सहस्रम अनंग वाणे जस्य इंद्रियम, जिनके इंद्रियम विमथितुम करणेन विभ्या, जिनके इंद्रियों को मंथन करने में समर्थ नहीं भय। ये सुखदेव गोस्वामी की कलम कहती है, कलम तो नहीं तब तो कल उनकी वाणी कहती है, सुखदेव जी कहते हैं। ऐसे श्री नारायण की क्षमता है, ऐसी समर्थ है, बाकी पूरी पूरा संसार इस काम से ग्रसित है जो ब्रह्मा जी के देते हैं। गीता में भी इसकी चर्चा हुई है, और इसका प्रकोप इतना है, इतना है, यत पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवः सहा स्त्रियः न दुह्यन्ति मनप्रीति पुंस काम हतस्यते। बोले ये पूरे संसार के जितने हिरण्य है, पशु है, स्त्री है, यदि काम से युक्त किसी व्यक्ति को दिया जाए फिर भी उनकी मन से मन में प्रीति जगा नहीं सकते। इसीलिए जजाति महाराज ने कहा न जातो काम कामानाम उपभोग न साम्यति। बोले काम का भोग करने से ये काम का उपशमन होने वाला नहीं है। बोले क्यों नहीं, ये हविषा कृष्ण वर्तमेव, हविषा माने हवि के द्वारा, जैसे कृष्ण वर्तम का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि का दूसरा पर्यायवाची नाम है कृष्ण वर्तम, याद रखना नाम, कृष्ण वर्तम अग्नि का नाम है। बोले जैसे हवी डालने से अग्नि भड़कती है बुझने के बजाय, वैसे काम का उपभोग करने से अग्नि वासना भड़केगी। वास्तव में काम जितना खतरनाक नहीं है, काम की वासना ज्यादा खतरनाक है। इस संसार में सबसे ज्यादा बदनामी है रजनीश की, है कि नहीं, संस्था बनाई कि उसका नाम है ओशो, परंतु हमने भी उनके ग्रंथ से पढ़ा है। उन्होंने कहा आई डू नॉट हैट सेक्स बट आई हैट सेक्स डिजायर, ऐसा उन्होंने कहा, हिंदी में लिखा है। इंद्रिय भोग को मैं बहुत ज्यादा निंदा नहीं करता हूं, इंद्रिय भोग की जो वासना है उसकी हम निंदा करते हैं। और उन्होंने कहा ये दोनों भारी विपरीत है, ये वासना बहुत खतरनाक है जो प्रेम को उत्पन्न होने नहीं देगी। कैसे प्रमाणित किया जाता है? बोले जैसे भूख है प्यास है तो पति पत्नी का जो भाव है भूख है बस वैसा ही सामयिक है। यदि ये सामयिक नहीं होता तो तुकाराम जी के बच्चे कैसे हो गए? वो भी तो बहुत बड़े भक्त थे जिनके लिए विमान आया, सब प्रमाण जानते हैं भारतवर्ष में। तो स्त्री पुरुष के संभोग के बिना तो संतान उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। तो इट इज वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन बहुत स्त्रियों के साथ मिलना, प्रोनोग्राफी साथ लेकर के चलना, हजार हजार लोगों के साथ इसी बात करना, ये बहुत गंदी बात है कि नहीं? ये गंदी बात है, ये अच्छा नहीं, ये वासना है। अन्यथा सांसारिक जीवन से ही तो सन्यासी पैदा होता है, कहां से आता है? मान लीजिए जो सन्यासी व्याजी हुआ है वो कहां से आया, उनसे पूछ लीजिएगा। ये सब भारी गंभीर बात है, इसका चिंतन होना चाहिए। हल्के फुल्के से सुनसन काम नहीं चलेगा। ऋषि नारायणम रिते, तो ये वासना जो है ये हमारे ज्ञान को दबा देती है। धूमेना ब्रियते वन्नी यथा दर्शो मलिन च यथो उल्वेना वृतम गर्भम तथा तेनेदम आवृतम। इन काम के द्वारा हमारा ज्ञान आवृत है। वास्तव में जो जितना वासना से रहित है उसमें उतना ज्ञान है, और जितना ज्ञान है यही प्रमाणित करता है कि वो वासना से रहित है। आप साबुन को कपड़े से रगड़ो अथवा कपड़े को साबुन से रगड़ो, यदि सफाई है या तो हम प्रमाणित करेंगे उसमें साबुन रगड़ा गया, या तो हम प्रमाणित करेंगे उसमें कपड़ा रगड़ा गया है। ये दोनों वाइस वर्षा है, परिपूरक है। गीता में भी कहा गया ये ज्ञान जो है ये काम इसको ढक रखा है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, ये धधकती हुई आग है, इसकी शिखा कभी नहीं बुझेगी। इंद्रिय मन बुद्धि में इसका अधिष्ठान है, इसको मारो, इसको मारो। फिर भी कैसे मारेगा व्यक्ति? नहीं मार पाता। इन वासनाओं से व्यक्ति मोहित हो जाता है और इन वासनाओं के जाल में फंसता हुआ मोह जाल समाव्रता। ये काम और क्रोध सगर्भा है। सगर्भा समझ रहे हैं? ना 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 ना, सगर्भा शब्द का अर्थ होता है काम और क्रोध बच्चे उत्पन्न किए बिना मरते नहीं है। जैसे एक महिला का गर्भ होता है ऐसे काम क्रोध सगर्भा है। सगर्भा शब्द का अर्थ होता है यदि आप काम को मन में पालन करेंगे, हम पालन करेंगे, वो काम के जितने बच्चे हैं हमारे मन में आएंगे। इसलिए काम को क्रोध को सगर्भा कहा गया। फिर भी हम इनके बारे में बहुत सोचते हैं। हाथी बड़ा कामी है, भौरा गंधलोलुप है, ये सब कामी है। एक बार सायंकालीन एक भौरा किसी कमल पुष्प में बैठ गया। आप लोग सभी जानते हो दो पुष्प होते हैं, कमल और कमलिनी। कमलिनी जो है वो रात को खिलती है और कमल दिन में खिलता है। ये अजीब विचार है। सायंकाल समय था, भौरा भिन्न भिन्न करता हुआ वहां चला गया, उस कमल पुष्प पर बैठ गया और उसी समय भुवन भास्कर अस्ताचल में गए और कमल के कोष धीरे धीरे बंद हो गए। भौरा उस कमल कोष के अंदर रहता हुआ सोचता है कि रात आएगी, रात बीतेगी, प्रभात होगा। रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भौरा क्या सोच रहा है? रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। आहा, रात बीतेगी और प्रभात आएगा, सुप्रभात होगा। भास्वान उदेती, फिर भगवान सूर्य का दोबारा उदय होगा। हसिष्यति पंकजश्री, बोले पंकज फिर हंसेगा, खिलेगा। हसिष्यति माने वो खिलेगा। संस्कृत क्या मजेदार काव्य है, कितना बढ़िया श्लोक है। हाँ, रात बीतेगी प्रभात आएगा, गमिष्यति रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। हाँ, भास्वान उदेति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, ये बातों को चिंता करता हुआ द्विरेफे, रेफ माने सुंड, तो भौरे के दो सुंड होती है, इसलिए संस्कृत में भौरा को कहते हैं द्विरेफा, दुई दुई रेफा द्विरेफा। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, बोले वो भौरा उस कमल कोश के अंदर ये सोचता हुआ रह रहा है, रात बीतेगी प्रभात आएगा, कमल फिर खिलेगा, फिर हम मधु चखेंगे। इतने में क्या हुआ, उस समय सांध्य काल सायंकाल था, एक गजराज उधर जा रहा था, कमल पुष्प को देखकर वो अपने सूंड से उसको लपेट करके खा गया। इत्थम विचिन्तयति, बस ये सोच ही रहा था भौरा, उसी समय कभी कहते हैं हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार, उस समय उस नलिन को, उस पंकज को गज ने खा लिया, सारी चिंता एक पल में खत्म हो गया। हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार, ऐसे ही मेरे मित्रों मेरी माताओं, इस संसार में काम वासना से हम इतने प्रेरित है, हम शादी करेंगे, हमारी बेटी होगी, हमारा बेटा होगा, उसको इंजीनियरिंग कराएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर मकान बनाएंगे, तब हम बानप्रस्थ लेकर के वृंदावन में भजन करेंगे, तब तक गज उज्जहार, हाथी आया महाकाल की लपलपाती जिह्वा सब चाट लिया, एक पल में चाट लेती है, ये स्थिति है। इसीलिए विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी समय इसी समय भोर की सांझ घरी पल मांझ सो पले अचानक आई गए ओ, कवि ने कहा है, ये भोर बीत जाएगी सांझ हो जाएगी, कब भजन करेंगे। राम भजियो न किए कछु सकृत, सुंदर यो पछताई बहेगो, फिर केवल पछतावा ही सार होगा। इसलिए इस वृंदावन धाम में आप सबका स्वागत है, और इसी शुभकामना के साथ कि विलंब करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो जहां है जैसी है जिस अवस्था में है जिस स्थिति में है भजन ही कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हाम, अन्यथा हा हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।